வந்திருக்கான் ஜீவ்கான் லெக்சர் நம்பர் 11. ஓம் நம சித்தேஸ்ய, ஓம் நம சித்தேஸ்ய, ஓம் நம சித்தேஸ்ய, ஓம் ஸ்ருதாத்மனே நம. நமோ அரிஹந்தாணம், நமோ சித்தாணம், நமோ ஆயரியாணம், நமோ வச்சாயாணம், நமோ லோயே சௌவசாஹூணம். சித்தம் சுத்தம் பணமிய ஜினிந்த வரணேமி சந்த மகலங்கம், குணரயண பூஷணுதயம் ஜீவஸ பருவணம் உச்சம். ஆச்சாரியர்கள் பண்டிட் டோடல்மல் ஜி துவாரா லிகித் யே சமய ஜான் சந்திரிகா ஜீவ் காண்ட் ஹை, ஜோ கோமட் சார் கி பாஷா டீகா ஹை, ஜிஸ் பர் சே யே ஹிந்தி அனுவாத் ஹம் யஹாம் பட் ரஹே ஹை. பிருஷ்ட சங்கியா ஹை 66. दसवीं गाथा में हमने गुणस्थानों के नाम देखे थे, 14 गुणस्थानों के नाम देखे थे. वहां उसको जीव समास कहा था, तो कहने का प्रयोजन ये तो अपना प्रकरण गुणस्थान का है, इसलिए
गुणस्थान के नाम भी याद करने के लिए कहा था.
हाँ,
किसको किसको आता है गुणस्थान के नाम, सबको आते हैं. चलो सबको आते तो बोलने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो.
आगे पढ़ेंगे हम तो. नीचे का जो पैराग्राफ है बड़ा, वहाँ से पढ़ते हैं.
अच्छा, किसी की बोलने की इच्छा हो तो हाथ उठाए, हम उनसे पूछेंगे. वो हाँ, कौन बोलना चाहता है अभी? एक भी नहीं. हाँ बोलो बोलो.
अश्विन बोल.
हाँ बहुत अच्छा, आपने सही 14 के 14 नाम बताए. इस तरह यहाँ क्लास में आने वालों को शूरवीर जैसा बनना चाहिए. आप तो केवल वीर ही बनना चाहते, लेकिन शूर नहीं बनना चाहते, ऐसा नहीं चलेगा.
जैसे आपने प्रमत्त संयत कहा, देश संयत कहा, ऐसे वीरत शब्द भी आता है. दोनों आते हैं, दोनों ही आते हैं. प्रमत्त वीरत भी कहते हैं, अप्रमत्त वीरत भी कहते हैं, प्रमत्त संयत भी कहते हैं, अप्रमत्त संयत भी कहते हैं. दोनों ही पद्धति से कथन आने वाला है आगे भी. अब यहाँ नीचे का पैराग्राफ यहाँ से हम शुरू करते हैं. पुनश्च ये कर्म सहित जीव जैसे लोक में हैं, वैसे नष्ट हुए हैं सर्व कर्म जिनके, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भी है ऐसा जानना. यानी ये जो कर्म सहित जीव है उनके 14 गुणस्थान देखे, वैसे कर्म रहित जीवों में सिद्ध भगवान भी है ऐसे जानना चाहिए. क्रमेण अर्थात क्रम से सिद्ध है. सो यहाँ ये बात आई ना गाथा में, क्रम से सिद्ध है. देखो क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्या, तो यहाँ कहते हैं क्रम से सिद्ध है. ये क्रम शब्द से पहले घाती कर्मों का क्षय कर संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थानों में यथा योग्य काल रहकर. ये यथा योग्य काल रहकर क्यों कहा होगा? संयोग केवली गुणस्थान में और अयोग केवली गुणस्थान में यथा योग्य काल रहकर कौन कहना चाहते हैं? हाँ वीरेश भाई. हाँ, 13वां गुणस्थान जो है संयोग केवली, उसका काल कितना है? तो हर एक जीव का यथा योग्य अपना अपना अलग है. कम से कम काल कितना होता है? एक अंतर्मुट. अधिक से अधिक कितना होगा? हाँ, देखो करोड़ पूर्व की आयु वाला किसी जीव ने 8वें साल के पश्चात संयम धारण किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया अंतर्मुहूर्त में, और फिर चौदहवें का अंतिम अंतर्मुहूर्त छोड़कर जितना बचा हुआ काल है वो तेरहवें गुणस्थान का होता है। इस तरह से हरेक की केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जितनी आयु शेष है उतना उसका तेरह और चौदहवा का मिलकर काल है। चौदहवें का हरेक का काल अंतर्मुहूर्त अयुरुलु इतना कहने जितना, परंतु तेरहवें का अपना अपना यथायोग्य काल होगा, इसलिए यहाँ यथायोग्य काल रहकर कहा। तो कहते हैं पहले घाती कर्मों का क्षय कर, संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थानों में यथायोग्य काल रहकर अयोग केवली के अंत समय में चौदह गुणस्थान के अंत समय में अवशेष अघाती कर्म, घाती कर्म तो पहले नष्ट हो चुके, अभी अघाती है बाकी, अवशेष अघाती कर्म समस्त क्षय कर सभी कर्मों का अरिहंत अवस्था यानी संयोग केवली अवस्था में कितने कर्मों का क्षय होता है? संयोग केवली आयोग नहीं पूछ रही हूं मैं, संयोग केवली पहले हमने देखा था त्रेसठ का नाश करके संयोग केवली हुए हैं, परंतु तेरहवे गुणस्थान में कितने कर्मों का नाश किया भगवान ने? हा? बोलो नलिन भाई,
अरविंद भाई आप बोलो।
हाँ, चौदहवे की मैं पूछ नहीं रही, मैं तेरहवे में पूछा मैंने। हाँ, 63 का तो बारहवे के अंत तक नाश हुआ, यानी जो संयोग केवली हुआ है उसके 63 कर्म प्रकृति सत्ता में नहीं है, सत्ता में से नष्ट हुई है। तेरहवे गुणस्थान वाला कितने कर्मों का नाश करता है? कौन से तीन? वो बारहवें के अंत में होता है, तेरहवें में कोई कार्य नहीं होता। हुआ ना, होने के बाद क्या किया उन्होंने? चार अघाती कर्म बाकी है, उनमें से कितने प्रकृतियों का नाश किया? कुछ नहीं किया। तेरहवें में कुछ कार्य नहीं होता है, चौदहवें के अंत समय में वहां भी कितने ही कर्म उदय रूप नहीं है, सत्ता में पड़े हैं, और सभी कर्मों का चौदहवें के अंत समय में नाश हो जाता है। वैसे उपांत समय में कुछ अंत समय में ऐसी बात होती है, उसमें हम 72 और 13। तो यहाँ कहते हैं संयोग केवली के अंत समय में अवशेष अघाती कर्म समस्त क्षय कर, अभी कोई कर्म नहीं बचेंगे, सिद्ध होते हैं ऐसा अनुक्रम जनाते, क्रमेण कहा ना उन्होंने, क्रम से सिद्ध होते हैं, ये क्रम बताया वहां पर। सो इस अनुक्रम को जनाने वाले क्रम शब्द द्वारा, ये क्रम शब्द क्यों डाला? क्योंकि वो विशिष्ट उसका अनुक्रम है, उसकी क्या करेंगे कहेंगे हम, अभी अंग्रेजी वाला है नहीं अमूल, यानी उसकी विशिष्ट एक पर्याय के बाद दूसरी होकर ही वो क्रम से सिद्ध भगवान हो जाएंगे। तो क्रम शब्द द्वारा परमात्मा के युगपत सर्व कर्म का नाशपना, पुनश्च सर्वदा कर्म के अभाव से, सर्वदा ने अभी एक कर्म का अभाव हुआ है वो कायम के लिए है, अभी फिर दोबारा उसका सद्भाव नहीं होने वाला है, तो सदा ही मुक्तपना इनका निराकरण किया। क्या कहते हैं ये यहाँ अलग बात बताना चाहते हैं।
यहाँ जो सर्वदा शब्द है ये तीन काल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना?
हाँ, हाँ। देखो सदा ही मुक्तपना जिसको कहते हैं, सदाशिव नाम का एक मत है, सदाशिव यानी हमेशा मुक्त ही है, उसका निराकरण करते हैं, क्योंकि अयोग केवली के अंतिम समय में उन्होंने कर्म का नाश किया है, उसके पहले कर्म का सद्भाव था और बाद में वो परमात्मा हुए हैं, परंतु क्या कहते हैं सर्वदा कर्म के अभाव से सदा ही मुक्तपना इनका निराकरण किया है। अन्य मति जो मानते हैं वो सदा शिव है, सदा ही शिव है, हाँ यानी पहले संसारी नहीं थे, हमेशा सिद्ध ही है, मुक्त ही है, ऐसे मानने वालों का निराकरण किया। आगे गुणस्थानों में औदयिक आदि भावों का होना दिखाते हैं, कौन से गुणस्थानों में कौन से भाव है, औदयिक आदि में किस किस को लेना, उस दिन हमने स्मरण किया था, हाँ सभी कितने हैं और कौन कौन से हैं? औदयिक औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक और पारिणामिक, ये पांच भाव जो है इनको क्या कहते हैं? तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, इन पांच भावों को क्या कहा है? जीव के असाधारण भाव, अन्य द्रव्यों में नहीं है, जीव में है, जीव के असाधारण भाव। अभी गुणस्थानों में कौन कौन से भाव है ये बात यहाँ बता रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे 11 नंबर के। मिच्छे खलु दयो विदिये पुन पारणामियो भाव, मिच्छे खो वसमियो अविरद सम्मितिन्नेव, मिथ्यात्वे खलु औदयिको द्वितीये पुनः पारिणामिको भाव, मिश्रेक्षायोपशमिकः अविरत सम्यक्त्वे त्रयैव। आपको अंदाजा आया होगा गाथा में, टीका में पढ़ते हैं मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में। हम मिथ्या तो गुणस्थान कहते हैं, यहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा है सर्वत्र। मिथ्या दृष्टि किसी जीव का नाम नहीं है, यानी जीव को संबोधन नहीं किया है, जीव को नहीं रेफर किया है, वो तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम है, यानी पहले गुणस्थान में। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में दर्शन मोह के उदय से उत्पन्न ऐसा औदयिक भाव। औदयिक भाव क्यों कहा मिथ्या गुणस्थान में? क्योंकि वहां दर्शन मोहनीय का उदय, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। अतत्व श्रद्धान है लक्षण जिसका, वो भाव कैसा है दर्शन मोह जो मिथ्यात्व, उसके उदय में जीव का जो भाव हो रहा है उस भाव का लक्षण क्या है, उसको कैसा पहचानेंगे? तो कहते अतत्व श्रद्धान, प्रयोजनभूत जो सात तत्व है उसका सही श्रद्धान नहीं होना, अयथार्थ श्रद्धान है उनके, जो का त्यों श्रद्धान, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने बताया है ऐसे उसको इन तत्वों की श्रद्धा नहीं है, प्रतीति नहीं है, वह पाया जाता है। खलु अर्थात प्रकटपणे,
खरेखर,
खरेखर ऊपर लिखा ना, मिच्छे खलु औदयो, मिथ्यात्वे खलु औदयिको। पुनश्च दूसरे सासाधन गुण स्थान में पारिणामिक भाव है। अभी यहाँ जो पारिणामिक कहेंगे तो आप कहेंगे सर्वत्र पारिणामिक तो सभी जीवों को है ही है, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी के पारिणामिक भाव है। यहाँ दर्शन मोहनी की अपेक्षा से पारिणामिक भाव ऐसा लेना, पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहनी की अपेक्षा बात करेंगे। दर्शन मोहनी का उदय है पहले में, दर्शन मोहनी संबंधी पारिणामिक है दूसरे में, यानी यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी की कोई अवस्था के कारण वो दूसरा गुणस्थान नहीं, या तो अनंतानुबंधी के उदय का, अनंतानुबंधी की अपेक्षा उदय कह सकेंगे, परंतु पहले चार गुणस्थानों में हम दर्शन मोहनी की ही अपेक्षा लगाते हैं, तो उसकी अपेक्षा यहाँ कोई नया वहाँ उदय उपशम शोपशम कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए इसको पारिणामिक कहा। तो कहते दूसरे सासाधन गुणस्थानों स्थान में पारिणामिक भाव है, क्योंकि यहाँ दर्शन मोह के उदय आदि की अपेक्षा का जो अभाव उसका सद्भाव है, यानी अभाव का सद्भाव है नहीं, इसका अभाव है। यहाँ दर्शन मोहनी के उदय उपशम वगैरह की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए दर्शन मोहनी की अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहा। पारिणामिक भाव उसको कहते हैं जहाँ कर्म की कोई उदय आदि की अपेक्षा नहीं है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। यहाँ भी दर्शन मोहनी के उदय आदि की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए दर्शन मोह की अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहा। पुनश्च मिश्र गुणस्थान में क्षायोपशमिक भाव है, किस कारण? अब यहाँ क्षायोपशमिक की परिभाषा हम पढ़े थे पहले, अभी इसको वाक्य को पढ़कर फिर दोबारा देखेंगे। मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव। मिथ्यात्व प्रकृति है वो सर्वघाती प्रकृति, प्रकृति बात करें, प्रकृति और स्पर्धक ऐसे दो शब्द आएंगे। मिथ्यात्व प्रकृति कर्म की प्रकृति जो मूल प्रकृति के दर्शन मोहनीय, मोहनीय मूल प्रकृति हुई, उसके दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दो भेद हुए। दर्शन मोहनीय के और तीन भेद आपको पता है कौन से जयबेन? दर्शन मोहनीय के तीन अलग अलग भेद आपको पता है? हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये जो तीन प्रकृतियां हैं उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। पेटा भेद, मूल प्रकृति के जो भेद है, पेटा भेद है, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। यहाँ क्या कहते हैं, तो ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, तो सर्वघाती प्रकृति है। प्रकृति की बात चल रही है, यानी ये ऐसी प्रकृति है कि अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करती है। इसका प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक्त्व है, श्रद्धा गुण है, तो सम्यक्त्व का पूरा घात करती है। इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है। जो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके जो परमाणु हैं उनमें अनुभाग कैसा होता है, तो अनुभाग को बताने के लिए यहां स्पर्धक शब्द आया है, ग्रुप ऑफ परमाणु। तो उनमें अनुभाग कैसा है, तो कहते वो भी सर्वघाती ही स्पर्धक है। सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। कितनी प्रकृतियां देशघाती होती है? देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। परंतु यहां हम दर्शन मोहिनी की बात कर रहे हैं। दर्शन मोहिनी के जो उत्तर भेद है ना, उसमें एक विशेषता है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों सर्वघाती प्रकृतियां हैं। उनके सभी स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती, दोनों सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उनके स्पर्धक भी सर्वघाती है। उनमें से किसी का भी उदय क्यों ना हो, मिथ्यात्व का हो या सम्यक मिथ्यात्व का हो, यहां सम्यक्त्व का पूरा घात ही है। एक बात, तीसरी प्रकृति सम्यक प्रकृति है, वो कैसी है? वो देशघाती प्रकृति है। अन्य देशघाती प्रकृतियों में और सम्यक प्रकृति जो देशघाती, उसमें क्या विशेषता है? प्रेरणा बिना आपको पता है, मति ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है और सम्यक प्रकृति भी देशघाती है। इन दो देशघाती प्रकृतियों में कोई डिफरेंस है? कौन? हाँ, मति ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है, वैसे सम्यक प्रकृति भी देशघाती है। तो इन दो देशघातियों में कुछ विशेषता है, कोई फर्क है कि दोनों समान है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, थोड़ा फर्क है, पर क्या है मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, ये उदय में भी मन नहीं घात होता, उसके उदय में भी घात नहीं होता। हम देशघाती उसी को कहते जिसके उदय में अपने प्रतिपक्ष का घात नहीं होता। ये तो समानता है, तो उसमें कोई अंतर भी है कि नहीं है? देखो, मति ज्ञानावरण प्रकृति है, प्रकृति देशघाती है, उसके स्पर्धक सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। दूसरे नाम मत निकालो भी। क्या ख्याल है कि जो मति ज्ञानावरण प्रकृति है उसके स्पर्धक सर्वघाती भी है, देशघाती भी है, परंतु सम्यक प्रकृति ऐसी प्रकृति है कि उसके सभी स्पर्धक देशघाती ही है। ये दोनों में डिफरेंस है। प्रकृति देशघाती होने पर सम्यक प्रकृति में कोई सर्वघाती स्पर्धक नहीं है। क्यों नहीं? यहां तो प्रकृति को लिया, स्पर्धक होते हैं, परंतु ये जो वो तो बंधने वाली प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण और सम्यक प्रकृति। उसकी विशेषता यह है कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा घटकर ये प्रकृति नहीं तैयार हुई है। अन्य जो देशघाती प्रकृतियां हैं वो बंधी जाती है और बनते समय उनके सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक बनते हैं।
देखो, यहाँ जो सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं, कोई भी जीव सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन दो प्रकृतियों का बंध करता ही नहीं। वो मिथ्यात्व का बंध करेगा और जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, उसके तीन भेद होंगे। तो जो मिथ्यात्व नामक प्रकृति है उसके अनंत वा भाग जितनी जो कैपेसिटी है वो होकर सम्यक मिथ्यात्व हो जाती है। सम्यक मिथ्यात्व का भी जो कोई कैपेसिटी है वो घटकर एकदम उसका अनंतवा भाग घटने के बाद अनंतवा भाग जितना रह जावे वो सम्यक प्रकृति है। ये दो नीचे की प्रकृतियां बनती नहीं है, ये अंतर आप बता रहे हैं।
देखो मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, सामान्य से ऐसा रूल है।
मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये चारों ही देशघाती प्रकृतियां हैं। केवल ज्ञानावरण यह सर्वघाती प्रकृति है। इतनी बात ख्याल में आई? अभी आप अवधि ज्ञानावरण के ऊपर से समझाओ तो मन परे वाला मति ज्ञान वाला समझ जाएंगे।
हाँ, नहीं पहले ये डिफरेंस बताएंगे, अच्छा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सामान्य ऐसा नियम है कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं, प्रकृति की बात कर रही हैं, देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। तो आप कहेंगे उसका उदय होने पर पूरा घात नहीं होता और ये सर्वघाती है ऐसा भी कह रहे हैं, तो क्या होगा? तो उनका क्षयोपशम होता है। तो क्षयोपशम की परिभाषा पहले देखेंगे फिर यहाँ देखेंगे हम। क्षयोपशम की परिभाषा याद है ना? हाँ बोलो, थोड़ा थोड़ा एक एक उसका पार्ट बाय पार्ट बोलो, फिर मैं रिपीट करूंगी। नहीं मिले भाई बता रहे। हाँ देखो, अभी जो क्षयोपशम होता है, कौन से प्रकृतियों में क्षयोपशम होता है? तो देशघाती प्रकृतियों में। अभी अभी तो सामान्य से देखे, बाकी में दर्शन मोहिनी में कोई अलग से बात है, चारित्र मोहिनी उसकी बात बाद में करेंगे, अभी ज्ञानावरण की अपेक्षा पहले घटाते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, वर्तमान काल में जो उदय रूप है वहां पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए मति ज्ञानावरण के ऊपर घटित करेंगे तो क्या आफत आएगी? जीव जड़ हो जाएगा, ज्ञान जो स्वभाव है उसका एक अंश भी पर्याय में प्रकट नहीं होगा यदि सर्वघाती का उदय हो जाए तो। तो क्या होता है उसका उदयाभाविक क्षय, उसका सर्वघाती रूप से उदय न होना। परमाणु तो जो स्थिति पूरी हुई है वो तो अभी उदय में आके खिर जाने वही वाले हैं, वो तो कुछ कायम के लिए अंदर ये सर्वघाती बैठे ही रहेंगे, ऐसा ही नहीं है। तो सर्वघाती है वो देशघाती रूप से होकर उदय में आने वाले हैं, उसका तो क्षय हो रहा है, परंतु कैसे? सर्वघाती रूप से नहीं हो रहा है। तो सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव वही है क्षय। दूसरा पार्ट क्या है? हाँ, ये जो सर्वघाती स्पर्धक सत्ता में पड़े हैं वो तो है, परंतु वो है वहीं पर है, अपनी जगह छोड़कर सर्वघाती रूप से उदय में आए ऐसी बात नहीं बन सकती। तो इसका सदवस्था रूप उपशम, उदय में नहीं आने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं।
उन्होंने जो बताया वो रिपीट करेंगे तो लोग समझेंगे।
फिर परिभाषा, क्षयोपशम की परिभाषा बता रहे हैं, उसका तीन भेद है, तीन भाग है। पहले भाग में हमने देखा का है वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, स्पर्धकों की बात चल रही है, उदयाभावी क्षय एक बात। दूसरी बात क्या है? भविष्यकालीन उन्हीं ने सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्थारूप उपशम, सदअवस्थारूप उपशम ने है वहीं पर बने रहना, उस रूप से उदय में नहीं आना। वो भले अन्य रूप से उदय में आवे, अन्य रूप से ने उसका अनुभाग घटकर देशघाती रूप से उदय में आवे। और तीसरा भाग है, उदय तो चल रहे ना, तो देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी जो अवस्था है उसको क्षोभशम कहते हैं। ये हमने स्पर्धकों पर घटित किया। जैसे मति ज्ञानावरण जो है वो देशघाती प्रकृति है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक है और देशघाती स्पर्धक भी है। तो हम आपका हमारी क्या बात, निगोद का भी कुछ न कुछ ज्ञान का वो क्षोभशम ज्ञान का उघार तो चल रहा है, तो उसके भी मति और श्रुत ज्ञान तो है ही पर्याय में विद्यमान। तो उनका क्या होता है या हमारा भी क्या हो रहा है? तो जो उदय रूप अभी निषेक अपना है ना, ज्ञानावरण का उदय रूप निषेक, तो हमने जब बंद किया था तो देशघाती सर्वघाती सभी सत्ता में पड़े हैं अपने मति ज्ञानावरण के। अभी उदय होते होते क्या होता है, वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होता है, देशघाती रूप टर्न हो जाते हैं, अपने रूप से उदय में नहीं आते। परंतु दूसरे कोई अपनी जगह छोड़कर हृदय में आवे तो नहीं, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। वो सर्वघाती रूप से हृदय में आ ही नहीं सकते। मति ज्ञानावरण की बात चल रही।
ये सब जीवों के परिणामों के निमित्त से वहाँ कर्मों में ये अवस्थाएं होती है। जीव किसी कर्म को कुछ नहीं करता है, लेकिन जहाँ जब जैसे परिणाम करता है तो परिणामों को समझने के लिए हमें कर्म का सहारा लेना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, ठहर ठहर ठहर, ये निमित्त की भाषा है। और इसमें देखो नाम तो है क्षयोपशम, लेकिन तीन क्रियाएं होती है, एक क्षय की, दूसरी सदवस्था रूप उपशम की, और तीसरी उदय की, लेकिन नाम है क्षयोपशम।
प्रकृति में नहीं, परंतु अभी सम्यक मिथ्यात्व वगैरह पर हमने घटित करेंगे। ये जो हम सामान्य जो देशघाती प्रकृतियां हैं जहां स्पर्धक दोनों पाए जाते हैं, वहां तो वो बात घटित होती है, वहां तक क्षय। क्षयोपशम यानी क्या? विशिष्ट प्रकृति का उदय नहीं होना, सत्ता में पड़ी रहना, और अन्य प्रकृति उदय रूप होना।
यहाँ तो आप
अब यहाँ तो ये दर्शन मोहिनी में अलग जाति से हम
यहाँ मति ज्ञानावरण की बात चल रही है, उसके हिसाब से सोचो।
क्षयोपशम की जो सामान्य परिभाषा है मैंने मति ज्ञानावरण के ऊपर से आपको बताई। अब ये अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है, तो उसमें क्या हाल हो रहा है? क्या उसमें भी ऐसा ही बनता है? आपको अवधि ज्ञान है क्या भाई? नहीं है? नहीं हो तो बताओ। हाँ तो क्या चल रहा है अभी? अवधि ज्ञान क्यों नहीं है हमारे? हमारी योग्यता नहीं है। हाँ ये पहले ध्यान में रखना है। हाँ हम अपने योग्यता से हमें अवधि ज्ञान नहीं है। अभी हम कर्मों की भाषा में बता रहे हैं, क्योंकि कर्णानुयोग में तो निमित्त की भाषा में कथन होता है, तो हम कहेंगे अवधि ज्ञानावरण चूंकि देशघाती प्रकृति है, फिर भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है अभी वर्तमान में। तो सर्वघाती भले उसके साथ देशघाती का भी उदय, तो सर्वघाती अपना कार्य करेगा। ख्याल में आती है बात? अब यहाँ हम मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व पर घटित करने जा रहे। वो जो देशघाती सर्वघाती है ना, वो उसको अभी भूल जाओ। अभी हम प्रकृतियों के नाम लेकर कहेंगे। किसी एक प्रकृति का उदयाभावी क्षय है, सदवस्था रूप उपशम है, और अन्य किसी प्रकृति का उदय है। यहाँ पर ये बात घटित होती है। अब देखो यहाँ पूछा था मिश्र गुणस्थान में एक क्षयोपशमिक भाव है किस कारण? मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव। वैसे मिथ्यात्व में सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, वही है लक्षण जिसका ऐसा क्षय होते हुए, उसको क्षय कहा। उदय का अभाव वही है क्षय। पुनश्च सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति का उदय विद्यमान होते हुए, यहाँ सम्यक मिथ्यात्व कोई देशघाती नहीं है, फिर भी वो मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व से अनंत गुना हीन वाली ऐसी अन्य प्रकृति है, वह भी है तो सर्वघाती। क्यों? सम्यक्त्व का घात है पूरा, सम्यक्त्व नहीं होने देती है, फिर भी वो मिथ्यात्व वाली प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय है, सदवस्था रूप उपशम है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। पुनश्च उदय को न प्राप्त हुए ऐसे निषेकों का उपशम होते हुए, मिथ्यात्व के जो उदय को प्राप्त नहीं है वे उपशमित है। कैसा उपशम है? उदय में नहीं आने योग्य उतना ही उपशम है। दर्शन मोनी के बारे में कहना है तो सम्यक प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है वो भी सत्ता में पड़ी है, उदय रूप नहीं है। उदय किसका चल रहा है? सम्यक मिथ्यात्व का। ऐसे होते हुए मिश्र गुणस्थान होता है, इसलिए ऐसे कारण से मिश्र गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव है। पुनश्च अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में, ये चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ कौन कौन से भाव है? यहाँ तो मोनी की अपेक्षा ही बात ले रहे हैं, और वो भी दर्शन मोनी की अपेक्षा, क्योंकि हमने देखे थे पहले तो चार गुणस्थानों में दर्शन मोनी की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो दर्शन मुनि की अपेक्षा कौन कौन से भाव है यहाँ पर? तो किसी को औपशमिक सम्यक्त्व है तो कहेंगे औपशमिक भाव है, किसी के क्षौपशमिक सम्यक्त्व है कहेंगे क्षौपशमिक भाव है, किसी के क्षायिक सम्यक्त्व है उसको कहेंगे क्षायिक भाव है। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व पुनश्च क्षायोपशमिक रूप वेदक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं, पुनश्च क्षायिक सम्यक्त्व, ऐसे नाम धारक तीन भाव है, क्योंकि यहाँ दर्शन मुह का उपशम व क्षोपशम व क्षय होता है। दर्शन मुनि की ये तीन अवस्थाएं यहाँ पाई जाती है। आगे कहे है ये जो भाव, इनके होने के नियम का कारण कहते हैं। अब यहाँ ये जो भाव बताए ना, औदयिक है, पारनामिक है, क्षौपशमिक है और तीनों है, अब उसका कारण आगे बताएंगे कि ये दर्शन मुनि की अपेक्षा बात चल रही है। 12 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। एदे भावानियमा दंसन मोहं पडुच्च भणिदाहु चारित्तम नत्थि जदो अविरद अन्ते सुठानेषु। एते भावानियमा दर्शन मोहं प्रतीत्य भणिता खलु चारित्रम नास्ति यतो अविरतांतेषु स्थानेषु। ऐसे पूर्वोक्त औदयिक भाव, औदयिक आदि भाव कहे, सभी बताए ना, वे नियम से दर्शन मोह के प्रतीत्य अर्थात आश्रय कर, यानी दर्शन मोहनी की अपेक्षा से भणिता अर्थात कहे है प्रकटपने, क्योंकि अविरत पर्यंत चारों गुणस्थानों में चारित्र नहीं है। देखो जब चारित्र नहीं कहते हैं तो संयम नहीं है, कौन सा, ना देश संयम है और ना सकल संयम है। सम्यक चारित्र नहीं ऐसा नहीं कहा, सम्यक तो होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो उत्पन्न हुए, परंतु जिसको संयम या चारित्र नाम पाया जाता है, ऐसे अनुव्रत महाव्रत की बात यहाँ है, अकेले बाह्य व्रत की नहीं, कितने कषाय चौकड़ी के अभाव है, तो उस अपेक्षा से यहाँ तक सभी कैसे है, असंयत है, असंयमी है, उनके चारित्र नहीं ऐसा कहेंगे, क्योंकि अविरत पर्यंत चार गुणस्थानों में चारित्र नहीं है, इस कारण से वे भाव चारित्र मोह का आश्रय करके नहीं कहे है, वह चारित्र नहीं है, इसलिए चारित्र मोह की कोई यहाँ अपेक्षा नहीं लगती है। इस कारण सासादन गुणस्थान में अनंतानुबंधी के क्रोधादि किसी एक कषाय का उदय विद्यमान होने पर भी, सासादन गुणस्थान कैसे होता है पता है किसी को? हाँ जयवेन, हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व के काल में, उसका काल कितना है तो अंतर्मूर्त है। अब जो अंतर्मूर्त समाप्त होने के पहले पहले, हाँ, एक समय अधि पहले हो या छह आवली तक पूर्व में, हाँ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ किसी एक का उदय आने पर क्या होता है, सम्यक्त्व छूट जाता है, हाँ, और वो जीव गुणस्थान कौन सा उसका होता है, सासादन गुणस्थान में आता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी के क्रोधादि किसी एक कषाय का उदय विद्यमान होने पर भी, देखो उदय है तो उदय कहना चाहिए था, तो उदय होने पर भी उसकी विवक्षा न करके, चारित्र मोहनी की अपेक्षा तो औदयिक भाव तो सभी के चल रहे हैं। अभी अब चौथे गुणस्थान में भी तीन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यहाँ तो औदयिक भाव की बात ही नहीं की, यहाँ तो केवल औपशमिक क्षौपशमिक और क्षायिक भाव के, क्योंकि दर्शन मोहनी की ही अपेक्षा लग रही है। ऐसे ही सासादन गुणस्थान में अनंतानुबंधी कौन सा मोहनी है, दर्शन मुनि के चारित्र मुनि है, अनंतानुबंधी चारित्र मुनि है, उसका उदय है और उसके उदय के कारण सम्यक्त्व में से छूटकर उसका वहाँ दूसरा गुणस्थान हुआ है, फिर भी वहाँ औदयिक भाव नहीं कहा, क्यों? दर्शन मुनि की ही विवक्षा चल रही है, अन्य कर्मों की विवक्षा नहीं चल रही है। वैसे अन्य उदय भाव बहुत सारे हैं, वहां वेद का उदय चल रहा है, लेशा है, असिद्धत्व है, गति उदय भाव है, अन्य की बात यहाँ नहीं हो रही है। विवक्षा किसकी है? दर्शन मुनि की। तो उसकी विवक्षा न करके पारिणामिक भाव सिद्धांत में कथन किया है, ऐसा तू जान, यह आगम में ही बताया है यहाँ पर पारिणामिक भाव, क्योंकि यहाँ दर्शन मुनि का पारिणामिक भाव बताया। पुनश्च अनंतानुबंधी के किसी कषाय के उदय की विवक्षा से औदयिक भाव भी है, ये औदयिक भाव नहीं है वो बात नहीं है, वो भाव भी यहाँ पर है। आगे दो गाथाओं द्वारा देश संहितादि गुणस्थानों में भावों का नियम दिखाते हैं। अभी तक कितने गुणस्थानों में भाव देखे हमने? हाँ, चार। कौन कहना चाहता है कौन कहा है? बोलो दिव्याबेन, बोलो। चार गुणस्थानों में हमके क्रम से भाव बताने हैं और अपनी विवक्षा है दर्शन मुनि के। पहले गुणस्थान में कौन सा भाव बताया? नहीं, हमें पांच भावों में से नाम लेना है। हाँ मंदाबेन बोलो। औदयिक भाव। दूसरे गुणस्थान में लक्ष्मीबेन? पारिणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में? शाहुक श्रमिक। और चौथे गुणस्थान में? हाँ औषमिक, शैवशमिक और क्षायिक, तीनों भाव। ये बात ख्याल में आई? अब आगे के गुणस्थानों में भी बताएंगे। अब दर्शन मुनि की अपेक्षा वहां नहीं लगेगी, वहां क्षायिक समय दृष्टि है, तो भी हम आगे के गुणस्थानों में चारित्र मुनि की बात करेंगे। हाँ आपका प्रश्न ऐसा है, सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ है और फिर आप कहते वहां पारिणामिक भाव है, तो यहाँ क्या ये दूसरा गुणस्थान दर्शन मुनि के उदय से हुआ है? मैं आपको एक एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या दर्शन मुनि के उदय से हुए है दूसरा गुणस्थान? नहीं, दर्शन मुनि के उपशम से हुआ है। उपशम तो पहले भी विद्यमान था, वहां तो चौथा गुणस्थान चल रहा था और अभी दूसरा आया है, तो उसमें दर्शन मोहनी का उसकी कोई खोट है? उसमें कुछ अभी कुछ नहीं है, उदय भी नहीं है और उपशम भी नहीं है। दर्शन मोहनी का क्षय हो ही नहीं सकता, नहीं तो दूसरे में आने का सवाल ही नहीं था। उदय उपशम क्षय, क्षोपशम, क्षोपशम भी नहीं है, यानी दर्शन मोहनी के चारों ही अवस्थाएं वहां नहीं है। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव है, जहाँ कर्मों की अपेक्षा नहीं आती वहाँ पारिणामिक भाव कहा जाता है। ख्याल में आई बात? दर्शन मुनि की, यह जीव की ही भाव की बात चल रही ना यहाँ। हाँ
दर्शन मुनि कर्म की अपेक्षा से हमें पहले चार गुणस्थान को देखना है, तो पहले गुणस्थान में कौन सा भाव चल रहा है, दर्शन मुनि का कौन सा उदय चल रहा है? मिथ्यात्व, तो वह मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो वहाँ औदयिक भाव है। अभी आपने बताया कि दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म के जो तीन भेद हो गए थे उसमें से कोई भी कर्म का उदय है क्या? ना मिथ्यात्व का उदय है, ना सम्यक मिथ्यात्व का है, ना मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है।
सम्यक प्रकृति,
सम्यक प्रकृति का उदय है। तो तीनों ही जो मतलब दर्शन मोहनी कर्मों की अपेक्षा से ना उसका उदय है, ना उसका क्षय है और ना उसका क्षोपशम है। ख्याल में अभी रह गया कौन सा? तो कहते एक पारिणामिक भाव, और उसकी अपेक्षा से ये तीन नहीं है इसलिए वहां पारिणामिक भाव कहा है। अब वो त्रिकाली स्वभाव वाला पारिणामिक भाव की बात यहाँ नहीं है, ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, दर्शन मोहनी की तीन ही अपेक्षा लगती है, उपशम, क्षोपशम या क्षय, ये तीनों ही नहीं है इसलिए वह पारिणामिक भाव है। अतत्व श्रद्धान रूप
अव्यक्त है ना,
अव्यक्त अतत्व श्रद्धान
अव्यक्त है, व्यक्त हो जाए तो मिथ्या तो हो जाता है।
ये आपके पास अगर शायद गुणस्थान प्रवेशिका पुस्तक होगी या गुणस्थान विवेचन, तो वहां देख लेना, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
हाँ, देखो अभी 13 नंबर की गाथा के
हमने बहुत बार
हाँ।
देखा था कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ वाला जो कोई है वो डबल एजेंट है, यानी जीवों में कषाय भी उत्पन्न कराएगा और सम्यक तो भी, क्योंकि
सम्यक तो कभी
भी घातेगा, तो ये दूसरे को नुकसान में वो घात है। आप बता रहे थे 13वां
आगे दो गाथाओं द्वारा देश संहितादि गुणस्थानों में भावों का नियम दिखाते हैं। अभी तक हमने 4 गुणस्थानों में भाव देखे, अभी आगे के गुणस्थानों में दिखाएंगे। 13 नंबर की गाथा,
देश विरदे पमत्ते इदरे यखो वसमीय भावो दू सो खलु चरित्त मोहम पडुच्च भणियं तहावरिम। देश विरते प्रमत्ते इतरे चक्षायो पशमिक भावस्तु सकल चारित्र मोहम प्रतित्य भणित तथा उपरि।
अभी यहाँ चारित्र मोहनी की अपेक्षा बात चलेगी, कब पढ़ेंगे हम टीका में। देश विरत में, पुनः प्रमत्त संयत में, पुनश्च इतर अर्थात अप्रमत्त संयत में, यानी 5वें 6वें और 7वें में क्षायोपशमिक भाव है। कौन से कर्मों की? कोई क्षायिक समय दृष्टि होगा उसके 5वें 6वें और 7वें गुणस्थान में कौन सा भाव है? क्षायोपशमिक, क्योंकि चारित्र मोहिनी की अपेक्षा लग रही। यहाँ पर हम टोटल भावों की बात नहीं कर रहे, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा उसको तो उसके भी क्षायोपशमिक भाव है, भले वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षायिक भाव चल रहा है क्योंकि 4थे में तो 5 आगे सर्वत्र है ही उसका, परंतु अभी यहाँ बात किसकी चल रही है? चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से। वहां देश संयत की अपेक्षा से 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान कषाय के उदय अवस्था को प्राप्त हुए जो देशघाती स्पर्धकों का अनंतवा भाग मात्र, उनका जो उदय, अभी जो 5वां गुणस्थान है देश संयत, कितनी प्रकृतियों का उदय का अभाव हुआ है और कितनी प्रकृतियां उदय रूप है, नहीं समझे? 5वें गुणस्थान में कितने कषाय चौकड़ी का उदय है? 5वें में भी आना, अभी 4था छोड़ दो, 5वें में आना। 2 कषाय, कौन से 2 का उदय है? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, और कौन से नहीं है? अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, उसका उदय नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? देश संयत में उदय किसका चल रहा है? प्रत्याख्यान कषाय के उदय अवस्था को प्राप्त हुए जो देशघाती स्पर्धकों का अनंतवा भाग मात्र, उनका जो उदय, उनके सहित उदय को नहीं प्राप्त होते हुए ही निर्जरा रूप क्षय होने वाले जो विवक्षित उदय रूप निषेक, क्या कहते हैं? उदय को नहीं प्राप्त होते हुए निर्जरा होना का अर्थ क्या है? उसका उस रूप से उदय न होना। तो किस रूप उदय होना? तो उसका अनुभाग घटकर उदय होना। खीर तो रहे है, निर्जरा तो हो रही है, परंतु उदय नहीं है, ऐसा जब कहते हैं तो उसका जैसा वहां उस कर्म में अनुभाग बटा है वैसा उसका फल नहीं मिल रहा है, उसको कहेंगे उदय में नहीं आते हुए। तो कहते हैं उन स्वरूप जो सर्वघाती स्पर्धक अनंत भागों में एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण मात्र है, उनके उदय का अभाव। ये बहुत बड़ा वाक्य है, यहाँ क्या कहते हैं? सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है और उसका जो अनंतवा भाग ऐसा जो देशघाती स्पर्धक है उसका उदय चल रहा है, वही है लक्षण जिसका ऐसा क्षय होते हुए, उसको कहा क्षय, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, पुनश्च वर्तमान समय संबंधी निषेक से ऊपर, निषेक यानी वर्तमान में जितने परमाणु एक साथ उदय में आते हैं वो ग्रुप को निषेक कहते हैं। और जो आड़ी लाइन के द्वारा बताने की पद्धति है, वर्तमान समय का निषेक, एक एक निषेक में अनंत अनंत परमाणु है, तो वर्तमान समय संबंधी निषेक से ऊपर के निषेक, ऐसे निषेक एक के बाद हम जो क्रम से दिखाते हैं सत्ता में पड़े हैं, और नीचे का वर्तमान रूप जो निषेक है वो उदय में आता है,
भविष्य में उदय में आने वाले निषेक।
हाँ, भविष्य में उदय में
ऊपर के निषेक,
तो वर्तमान समय संबंधी निषेक के ऊपर वाले निषेक जो उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, उनकी सत्ता रूप जो अवस्था, यानी वर्तमान में कुछ परमाणु उदय रूप है वो वर्तमान का निषेक है, और भविष्य में पड़े हैं निषेक वो सत्ता रूप निषेक है, वो भविष्य में ही है, वर्तमान में उदय में नहीं आ रहे हैं, ऐसा उपशम, उसी को उपशम कहा। ये जो उपशम सम्यक्त्व के काल में जो अंतर पड़ता है फिर उपशम होता है, उस उपशम की यहाँ बात नहीं है, सत्ता में पड़े रहना उदय में नहीं आना, उसी को यहाँ उपशम कहा है। ऐसे उपशम होते हुए देश संयम प्रकटता है। पहले हमने देखा था प्रत्याख्यानावरण जो है तो क्या करता है, वो संयम प्रकट होने नहीं देता, परंतु थोड़ा संयम प्रकट है ना वहां पर, पांचवें गुणस्थान में थोड़ा संयम प्रकट है, चौथे गुणस्थान वाले को भी प्रत्याख्यानावरण का उदय था, परंतु उसके वहां तो तीव्र स्पर्धकों का उदय था, वो प्रत्याख्यानावरण तो था ही था, परंतु उसके प्रत्याख्यानावरण संज्वलन का भी उदय था ना, पर चौथे वाले को कहो या पहले वाले को कहो जो प्रत्याख्यानावरण का उदय है उसके तो तीव्र उदय है, सर्वघाती का उदय है, जो पांचवे में है उसका मंद उदय है, इसलिए वहां क्षोपशम कहा उसका। इसलिए चारित्र मुख के आश्रय से देश संयम क्षयोपशमिक भाव है ऐसा कहा है, संयमा संयम भी कहते हैं, देश संयम को ही संयमा संयम कहते हैं। पुनश्च वैसे ही प्रमत्त अप्रमत्त में भी संज्वलन कषायों के उदय में आए हुए जो देशघाती स्पर्धक जो अनंतवे भाग रूप है, जो सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं देशघाती भी स्पर्धक होते हैं, तो ये कैसे अनंतवे भाग रूप उदय में आ रहे हैं, उनके उदय से सहित और उदय को न प्राप्त होकर ही क्षयरूप होने वाले जो विवक्षित उदय निषेक उनरूप सर्वघाती स्पर्धक जो अनंत भागों में एक भाग बिना बहुभाग है, क्या कहना चाहते हैं, वर्तमान में जो निषेक चल रहा है निषेक है उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है, किसकी बात चल रही है, संज्वलन की, संज्वलन का उदय चल रहा है तो वहां देशघाती भी है और सर्वघाती भी है, परंतु वो जो सर्वघाती कितने हैं, अनंत बहुभाग है और एक भाग प्रमाण है देशघाती है, अभी उदय किस रूप से चल रहा है, देशघाती रूप से चल रहा है, सर्वघाती है उसका फल नहीं मिल रहा है, उसकी निर्जरा तो हो रही है, खीर तो रहे है, परंतु उसका उस रूप से फल नहीं मिल रहा,
ये अनंत बहुभाग देश क्या है? अनंत बहुभाग,
ये अनंत बहुभाग क्या है, जैसे हम कहेंगे अनंत के बदले हम 100 संख्या लेते हैं, तो हम किसी संख्या के 1000 हमारे पास रुपए है और हमें उसके 100 भाग करना है, तो हम कहेंगे उसका एक भाग और बहुभाग, तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और बहुभाग की यानी 99 भाग की 990, तो ये एक भाग हुआ और बहुभाग हुआ। वैसे किसी संख्या को अनंत से भाग देंगे तो एक भाग की जो वैल्यू है उसको कहेंगे अनंतवा भाग, जैसे हमने सौवा भाग कहा और बहुभाग में 99 आए थे ना वहां पर, वैसे वो अनंतवा भाग छोड़कर बाकी जो बचे हैं उसको हम कहेंगे बहुभाग। तो वे परमाणु की संख्या तो अल्प है, फिर भी अभी उदय किस रूप चल रहा है, देशघाती रूप से चल रहा है, तो देशघाती रूप उदय चल रहा है संज्वलन का, तो वहां संयम चलता रहेगा, संयम का घात नहीं कर रहे। हमारे आपके सर्वघाती का उदय चल रहा है, संज्वलन का उदय हमें भी चल रहा है ना, तो संज्वलन का किस रूप उदय चल रहा है हमारा भी? हमारा सर्वघाती। और मुनियों को छठे सातवें गुण स्थान उसकी बात चल रही, देशघाती रूप से यही बात चल रही। सर्वघाती तो वर्तमान निषेक में है और वो खिर भी रहे हैं, परंतु वो अपना फल देने में समर्थ नहीं, तो वो तो हम कहेंगे देशघाती रूप से टर्न होके उदय में, ऐसा कहेंगे। उसकी निर्जरा हो रही है परंतु फल नहीं मिल रहा, फल किस रूप से मिल रहा है? देशघाती जो है अनंत विभाग, परंतु उसका फल चल रहा है यहाँ पर। और ये कुछ जीव के परिणामों के अनुसार चल रहा है, जीव के परिणाम है वहां पर। वैसे तो जो सत्ता में पड़े वो भी इस रूप से होकर उदय में आते हैं, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ऐसे नहीं कि उनके देशघाती का उदय है इसलिए उनको संयम होता है और हमें नहीं है, हमारा सर्वघाती इसलिए हमको नहीं, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणाम करता है, तो वहां कर्मों में भी अपने आप उलट पुलट कुछ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म हमें गवर्न कर रहे, हमें कुछ वश करके रखा है।
ये दोबारा पढ़ेंगे,
दोबारा पढ़ेंगे, देखो
पुनश्च
ऊपर से
पहले लाइन से,
पहले लाइन से
ये नीचे से छठी लाइन, पुनश्च वैसे ही प्रमत्त अप्रमत्त।
हाँ
नीचे नीचे,
हाँ नीचे का पैराग्राफ ना, पुनश्च वैसे ही प्रमत्त अप्रमत्त में,
यानी छठी सातवें में,
हाँ छठी सातवें में भी संज्वलन कषाय के उदय में आए हुए जो देशघाती स्पर्धक, जो अनंत वे भाग रूप है। ये स्पर्धकों में अनंत करना, परमाणु में नहीं लगाना, भी स्पर्धकों में लगाना, अनंत वे भाग रूप है,
यानी मंद रूप से
मंद अनुभाग वाले, उनके उदय से सहित, यानी उदय किसका चल रहा है? देशघाती, जो मंद अनुभाग वाले हैं। और उदय को न प्राप्त होकर ही क्षय रूप होने वाले जो विवक्षित उदय निषेक, उदय रूप ही निषेक है परंतु उस रूप उसका फल नहीं मिल रहा है, उन रूप सर्वघाती स्पर्धक जो अनंत भागों में एक भाग बिना बहुभाग है, स्पर्धकों के जो अनंत स्पर्धक होते हैं उसमें एक भाग प्रमाण देशघाती है और बहुभाग प्रमाण सर्वघाती है, उनके उदय का अभाव वही है लक्षण जिसका ऐसा क्षय होते हुए। ये तो एक बात हुई उदयाभावी क्षय। पुनश्च ऊपर के जो निषेक, ऊपर के यानी भविष्य के, उदय को प्राप्त नहीं हुए उनका सत्ता अवस्था रूप है लक्षण जिसका ऐसा उपशम होते हुए। उपशम भी अलग दो प्रकार के हैं, यहाँ क्या है सत्ता में है उदय में नहीं है, उसी को यहाँ उपशम कहा है। ऐसे होते हुए प्रमत्त अप्रमत्त होता है कौन? जीव। इसलिए चारित्र मोह अपेक्षा यहाँ सकल संयम है, तथापि क्षयोपशमिक भाव है ऐसा कहा है। क्या कहते हैं? यहाँ पर सकल संयम होने पर भी चारित्र मुनि की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव है। ये वाक्य ऐसी थोड़ी उल्टी पुल्टी है ना, यानी चारित्र मोह की अपेक्षा सकल संयम है, ऐसे नहीं, चारित्र मुनि की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव है। उनको ऐसा कहना था यहाँ सकल संयम है तो भी चारित्र मुनि की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव है, ये सीधा वाक्य। हाँ। यानी चारित्र मुनि की, ये देखो ऐसा कहा यहाँ सकलम संयम है तथापि क्षयोपशमिक भाव है, क्यों? चारित्र मुनि की अपेक्षा। इस तरह श्रीमान अभयचंद्र नामक आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती उनका अभिप्राय है। जो जो षटखंडागम के ज्ञाता है, वेत्ता है, उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते। अब यहाँ अभयचंद्र नामक जो मुनिराज है उनका नाम यहाँ लिया है। भावार्थ, सर्वत्र क्षोभशम का स्वरूप ऐसा ही जानना, ये प्रसंगवश अभी क्षोभशम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जहां प्रतिपक्षी कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाए उन सहित, उदय किसका है? देशघाती का। उदय निषेध संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं पाया जाता, उसी का अर्थ क्या है? बिना ही उदय दिए निर्जरा होती है। उदय होना है ना उसका फल मिलना, उस रूप से उसका तो फल नहीं मिल रहा, फल तो देशघाती का चल रहा है, वही क्षय। यानी बिना उदय दिना दिए खिर जाना वो क्षय, परंतु उदय है ही नहीं ऐसी बात नहीं, उदय तो है परंतु वो देशघाती का फल मिल रहा है वहां पर। और जो उदय को न प्राप्त हुए आगामी निषेक यानी भविष्यकालीन निषेक, उनका सत्ता स्वरूप उपशम, सत्ता में रहना उदय में नहीं आना वही है उपशम। उन दोनों के होने पर क्षोपशम होता है। सो स्पर्धकों का वा निषेकों का, वा का अर्थ सर्वत्र और करना, और निषेकों का और सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों के विभाग का आगे वर्णन होगा, इसलिए यहाँ विशेष नहीं लिखा है। कितने शब्द पहले यूज तो हो गए यहाँ तो कहेंगे, परंतु इसका असली जो भाव भाषण है आगे चलकर उसका विस्तार से वर्णन आने वाला है, तब और भी होगा। वैसे जहाँ पॉसिबल है हम भी उसको लेते हुए बढ़ेंगे आगे। सो यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार चारित्र मोह का क्षयोपशम ही है, इसलिए क्षयोपशमिक भाव देश संयत प्रमत्त प्रमत्त में जानना। उसी प्रकार ऊपर भी गाथा में आए थे ना, भनितस तथा ऊपरी, ऊपर भी अपूर्व कर्णादि गुण स्थानों में चारित्र मोह के आश्रय से भाव जानना। यहाँ तो दर्शन मोहनि और चारित्र मोहनि की अपेक्षा ना, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थानों की यह विभाजन है, तो पहले चार गुणस्थान दर्शन मोहनि की अपेक्षा से बताए हैं, अब आगे चारित्र मोहनि की अपेक्षा से। आगे 14 नंबर की गाथा पढ़नी है। तत्तो वरिम वसम भावो वसामगे सुख वगे सु थयो भावो नियमा अजोगी चरिमोति सिद्धेय तत उपरी उपशम भाव उपशामके सुक्षपकेशु क्षायिको भावो नियमा अयोगी चरम इति सिद्धेच। उसके ऊपर उपशम श्रेणी संबंधी अपूर्व करणादि चार गुणस्थानों में औपशमिक भाव है। कौन से चार गुणस्थान है? हाँ प्रेरणा बेन, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, ये उपशम श्रेणी के चार गुणस्थान। हाँ वहाँ औपशमिक भाव है क्योंकि वह संयम चारित्र मोह के उपशम ही से होता है। यानी यहाँ जो संयम है चारित्र मोहनि की बात चली ना, वो चारित्र मोह के उपशम से चल रहा है यहाँ पर। पुनश्च क्षपक श्रेणी संबंधी अपूर्व करणादि चार गुणस्थान और संयोग अयोग केवली, इनमें नियम से क्षायिक भाव है क्योंकि उस चारित्र का चारित्र मोह के क्षय ही से उपजना होता है। यानी क्षपक श्रेणी में क्षायिक भाव कहा है और उपशम श्रेणी में औपशमिक भाव कहा। अभी यहाँ तो ये तो स्थूल रूप से इतनी ही बात करेंगे, एक एक गुणस्थान में वहां भी औपशमिक भाव भी घटित होता है, वो तो बात यहाँ नहीं ले रहे हम, क्योंकि पूरा औपशमिक तो भाव ग्यारहवें में हो जाएगा पूर्ण उपशम। वैसे आठवें गुणस्थान में क्षपक के कोई क्षपणा का कार्य नहीं होता, फिर भी यहाँ क्षायिक भाव कहा है क्योंकि वो चलकर आगे क्षपणा करने वाला है। हम इतना ही लेंगे, उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में औपशमिक भाव बताया है और क्षपक श्रेणी के चार गुणस्थानों में और संयोग अयोगी में क्षायिक भाव बताए। पुनश्च वैसे ही सिद्ध परमेष्ठियों में भी क्षायिक भाव होता है क्योंकि उस सिद्ध पद का सकल कर्म के क्षय ही से प्रकटपना होता है, वहां तो सभी कर्मों का क्षय होता है। अभी तो हम केवल चारित्र मोह की बात देख रहे थे, आगे का विषय कर लेंगे, एक लाइन पढ़ लेते हैं आगे। पूर्व में नाम मात्र कहे जो 14 गुणस्थान, उनमें पहले कहा हुआ जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, उसके स्वरूप का प्ररूपण करते हैं। तो ये 15 नंबर की गाथा हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो। प्रेरणा में